आप सभी बाबा के इस बृहद यज्ञ के यज्ञ स्नेही और यज्ञ सहयोगी बच्चे हैं। आप सबके सहयोग से यज्ञ का इतना सुंदर विस्तार हुआ है। रुद्र भगवान ने यज्ञ रचा और इतना वंडरफुल यज्ञ रचा, जिस यज्ञ में कोई कुंड नहीं है, कोई अग्नि नहीं है, कोई पंडित लोग स्वाहा स्वाहा नहीं कर रहे हैं। ये ज्ञान यज्ञ है और इस ज्ञान यज्ञ में योग की अग्नि है और हम सब अपनी कमी कमजोरी संस्कार उनकी आहुति देते हैं। यही हमारे तिल और जौ हैं जिनकी आहुति पड़ती है। और जब सभी आत्माओं की कमी कमजोरियों की आहुति पड़ जाती है तो यज्ञ संपन्न हो जाता है और नई सृष्टि आ जाती है। तो नई सृष्टि की स्थापना के लिए, पुरानी कलयुगी सृष्टि के परिवर्तन के लिए स्वयं रुद्र भगवान ने यज्ञ रचा और इस यज्ञ को नाम दिया। पूरा नाम याद है ना? पुरानों को तो पता है, नयों को शायद न मालूम हो। राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, इतना बड़ा इनाम है। किस अश्व को हम इसमें स्वाहा करते हैं? ये जो देह अभिमान का अश्व है इसको स्वाहा करते हैं, वो अश्व नहीं, घोड़े को नहीं। तो बाबा के इस रुद्र यज्ञ में हम सब ने, जिसने देह अभिमान की आहुति दे दी, यज्ञ सफल हो जाता है। और जब तक देह अभिमान रहता है तब तक यज्ञ में कई प्रकार के विघ्न आते हैं। वैसे दिखाते हैं, जब ऋषि मुनियों ने यज्ञ रचा तो उसमें असुरों ने विघ्न डाले। बाबा कहते हैं असुरों ने विघ्न नहीं डाले, उसमें कूड़ा कचरा नहीं डाला, लेकिन इस रुद्र यज्ञ में आसुरी वृत्तियों का विघ्न पड़ता है, आसुरी संस्कारों का विघ्न पड़ता है। अगर कोई भी यज्ञ में कोई गलत व्यवहार करता है, संकल्प संस्कार उसके पतित है, विकारी हैं, देहमान वाले हैं, तो वही यज्ञ के लिए विघ्न है। और देहमान में सबसे बड़ा विघ्न आता है मैं ही सब कुछ, समझदार हूँ, मददगार हूँ, बुद्धिमान हूँ, मेरे सिवाय यज्ञ कैसे चलेगा। कई लोगों को सूक्ष्म अभिमान रहता है मैं का, और उस मैं के कारण बहुत सारे विघ्न आते हैं यज्ञ में। इसलिए बाबा ने अपने बच्चों को कहा, बच्चे इस मैं की बलि चढ़ा दो। भक्ति में यादगार बनाया, देवियों के आगे बकरे की बलि चढ़ा देते, मैं करने वाले की बलि चढ़ाते, जानवर बेचारा जो निर्दोष है उसकी बलि चढ़ाते। और बाबा ने क्या कहा, बच्चे मैं की बलि चढ़ा दो। इतने निमित्त भाव से निर्माण चित्त हो करके बाबा के कार्य में सहयोगी बनो, करामन हार करा रहा है। मैं कर रहा हूं, जहां ये मैं आया वहां अभिमान आएगा, और जब अभिमान आएगा तो अपमान की फीलिंग आएगी। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई, तो गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। एक अभिमान सब विकारों को ले आता है। इसलिए बाबा ने हम सब बच्चों को नम्र चित बनाया, निर्माण चित बनाया। बच्चे इस हाथ से करो तो इस हाथ को भी पता न चले, कहीं वर्णन नहीं करना मैंने इतना किया। मैंने किया क्या, भगवान को आपके सहयोग की जरूरत थी? बाबा कहते हैं बच्चे ये तो आपका भाग्य बन रहा है, ये भाग्य विधाता ने भाग्य बनाने की ये युक्ति रची है कि आप अपना तन मन धन जो शक्ति जो विशेषताएं हैं वो बाबा के यज्ञ में स्वाहा करो, समर्पित करो। एक विशेषता को अगर आपने बाबा के यज्ञ में लगाया तो अनेक विशेषताएं इसके साथ साथ आ जाएंगी। इसलिए जो यज्ञ सहयोगी बनते हैं, आपने देखा होगा कई बाबा के ऐसे बच्चे हैं जो मुरली नहीं सुनते हैं, धारणाओं में भी नहीं चलते, लेकिन सहयोगी हैं। कोई भी सेवा हो, दीदी हमको ये सेवा बताना, हम करेंगे। लेकिन सहयोगी बनते बनते वो स्नेही बनते, और स्नेही बन करके वो योगी बन जाते। इसलिए कई बाबा के बच्चों को ये अनुभव है कि हमने यज्ञ को कुछ भी सहयोग दिया तो बाबा की परिवार की निमित्त आत्माओं की दुआएं मिली और दुआओं ने हमें योगी बना दिया। तो आप सब ऐसे बाबा के बच्चे हो ना, किस तरह का सहयोग दे रहे हो तो आप जानते हो, वर्णन करने की क्या बात है। क्योंकि आज जितना भी इस विश्वविद्यालय का विस्तार हुआ है उस विस्तार के पीछे बाबा के बहुत अच्छे सच्चे स्नेही और सहयोगी बच्चे हैं। कभी कोई बात की कहीं भी आवश्यकता पड़ी सदा ही हाजिर रहे हैं। तन से भी किया है, मन से तो करते ही हैं, लेकिन धन भी लगाया, नहीं तो इतने बड़े बड़े निर्माण कार्य हो सकते हैं क्या? आज इतना सुंदर आप ज्ञान सरोवर देख रहे हो, शांतिवन देख रहे हो, और कितने सारे परिसर बने हैं जो सबके सहयोग से ही बने हैं। मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कोई ऐसे डोनर्स नहीं हैं जिनके सहयोग से कोई ये यज्ञ चल रहा है। और बाबा ने एक बहुत सुंदर नियम बनाया कि किसी एक का सहयोग नहीं चाहिए, सबके सहयोग से बड़े बड़े कार्य, असंभव कार्य संभव हुए हैं। नहीं तो भगवान के हाथ में तो बहुत बड़ी जादू है, किसी एक बच्चे को कोई अरब खरब पति को टच कर दे तो ये सब क्या है, अपने आप बन जाएगा, हो जाएगा। लेकिन कहता है मैं तो अपने गरीब बच्चों की पाई पाई से स्वर्ग की स्थापना करता हूँ और उनका भाग्य बनाने के लिए कहता हूँ बच्चे थोड़ा थोड़ा कणा दाना बाबा के यज्ञ में लगा दो। अगर जो थोड़ा भी कणा दाना आपका लग गया तो बाबा उसका रिटर्न देने के लिए बंध जाएगा। ये भी भगवान को बांधने की अच्छी रस्सी है। अगर कोई बाबा का बच्चा थोड़ा सा भी सहयोग देता है तो संगम पर भी बाबा किसी का रखता नहीं है, उसको कई गुना रिटर्न हो करके इसी समय मिल जाता है। ये अनुभव होगा आप लोगों को जिन्होंने अगर जरा भी कोई सेवा केंद्र बनाने में मदद की है, जमीन लेके दिया, मकान बनवा दिया, या बहनों को कोई चीज की कोई आवश्यकता पड़ी उसमें सेवा की, प्रदर्शनी किया, मेला किया, सेवाओं के कोई कार्यक्रम किए, कोई कहते है दीदी हमारी तरफ से गाड़ी का प्रबंध मैं कर देता हूँ, डीजल का प्रबंध मैं कर देता हूँ, सेवा आप करो, सहयोग हम दे देते, तो ऐसे सेवाधारी जो सहयोगी बनते हैं उनको भी बहुत दुआएं मिल जाती हैं। इसलिए बाबा ने यज्ञ रचा है और इस यज्ञ के अंदर इतने सब बच्चे अपना अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग दे रहे हैं। बाबा का एक शब्द है, बूंद बूंद से तालाब बन जाता है। बूंद बूंद का सहयोग इतने बड़े यज्ञ को कितना सुंदर सुचारू रूप से चला रहा है, आप सब देख रहे हो। कोई से मांगा नहीं जाता, कोई से कहा नहीं जाता, लेकिन सबको आता है ये हमारा घर है, हमारा यज्ञ है, हमें करना है। कोई कोई आके पूछते हैं। साकार में भी ब्रह्मा बाबा के समय जब बच्चे आते थे, जो नए नए आते थे, वो पूछते थे, बाबा ये सब खर्चा कैसे चलता है, कौन देता है? आप किसी से कहते नहीं हो, कोई से मांगा नहीं जाता है, और इतनी सब व्यवस्थाएं देते हो, रहने की प्रबंध है, खाने पीने के प्रबंध है, सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन कोई किसी से कहता नहीं है, ये चलता कैसे है? अभी भी मैं नीचे क्लास करा रहा था, तो उसमें प्रश्न उत्तर का क्लास था ट्रांसपोर्ट विंग के अंदर, तो उसमें भी यही प्रश्न आया, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं, इतना सारा कारोबार चल रहा है, ये चलता कैसे है, कैसे चलता है? तो बाबा ने एक बार बड़ा मजे से रमणीक उत्तर दिया था, बच्चे मेरे तो इतने ढेर सारे बच्चे कमाऊ पूत हैं, कमाने वाले बच्चे हैं, अगर माँ बाप कुछ भी न करें और बच्चे उसके कमाने वाले हों, लौकिक में भी कोई तीन चार बच्चे कमा रहे हों, तो ये उनसे नहीं पूछा जाता ये परिवार कैसे चलता है, ये कहाँ से आता है? और इस बाबा को तो इतने ढेर बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं, और सब कमाने वाले हैं, सब कमाऊ पूत हैं। कोई से बाबा ने नौकरी बिजनेस धंधा छुड़ाया है क्या? सब कमा रहे हैं, और कमा रहे हैं तो उस धन को सही रूप में प्रयोग करने की विधि बताई जा रही है। ऐसे नहीं गंवा दो, एक तरफ कमाओ और दूसरी तरफ गंवा दो, क्योंकि लोग कमाते हैं, बड़ी मेहनत करके कमाते हैं, लेकिन कोई एक दो बुरी आदतें अगर उनके जीवन में होती हैं तो कमाई कहाँ जाती है पता नहीं चलता, कंगाल के कंगाल, गरीब के गरीब रह जाते हैं। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को, कमाने वालों को विशेष कहा है, धन को कैसे सफल करो, कैसे प्रयोग करो। अगर व्यर्थ जा रहा है, देखा देखी में जा रहा है, किसी से भेंट कर रहे हो तो भी वो निष्फल हो गया, आपकी कमाई जो हुई वो व्यर्थ चली गई। इसलिए ध्यान देना कि बाबा के बच्चे जो कुछ कर रहे हैं, कमा रहे हैं, किसी भी तरह से पैसा आ रहा है, उसका कुछ हिस्सा बाबा ने, हमारी दादियों ने पैसे को चार भागों में बांटा। आपकी कमाई चार भागों में बटनी चाहिए। जानते हो कौन से चार भाग हैं? किन किन भाइयों को पता है, हाथ उठाओ। जो पुराने उनको पता होगा, माताओं को मालूम है? हमारी दादी जी बताती थी, मान लो आपकी कमाई, मिसाल बता रहा हूं मैं, पूरी नहीं बता रहा हूं, लेकिन मान लो आपने 100 रुपया कमाया, तो 100 रुपये में चार भाग करो। चार भाग अगर कर लोगे तो एक है अपने लिए, शरीर निर्वाह के लिए, एक है समय पर जरूरत पड़ने के लिए, आई बेल बैंक में, मानो कोई बीमारी आती है, कोई शादी ब्याह होता है, कोई बड़ा खर्चा होता है, कुछ भी होता है, तो उसके लिए किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, इसलिए एक हिस्सा बैंक में, एक हिस्सा शरीर निर्वाह के लिए, और एक हिस्सा जिस सेवा स्थान से आपको इतनी सुंदर पालना मिल रही है, गाइड कर रहे हैं आपके धन को, बचत की स्कीम बता रहे हैं, बचाओ इसको व्यर्थ से, और वहां से हमारी जीवन श्रेष्ठ बनी है, तो एक हिस्सा उसके लिए है, और चौथा हिस्सा मुख्य केंद्र मधुबन के लिए है, क्योंकि इतनी बड़ी कारोबार, इतना बड़ा सब कुछ चल रहा है, अगर इस तरह से अपने पैसे को मैनेज कर लोगे तो कभी आपको कमी नहीं पड़ेगी, सबकी दुआएं मिलेंगी, सेवाएं अच्छी होंगी, और बैलेंस से चलने से ये जीवन जो है बहुत ब्लिसफुल आनंददायक बन जाती है। बैलेंस से सबकी ब्लेसिंग्स मिलने लगती हैं, दुआएं मिलती हैं। आपने सुना होगा अति जो है कोई भी क्षेत्र में अति बहुत नुकसान करती है। कईयों को जोश आता है और जोश में फिर होश नहीं रहता। बाबा मिल गया, मुझे ये करना है ये करना है। लौकिक जवाबदारियां हैं, लौकिक परिवार है, लौकिक कर्मबंधन बनाए हुए हैं और एकदम ज्ञान मिला और एकदम उमंग गुस्सा आ गया, कुछ परवाह नहीं की और सब समर्पित कर दिया। सोचते हमने तो सब कुछ दे दिया, लेकिन थोड़े समय के बाद जब जवाबदारियां आती हैं तो फिर सोचना पड़ता, पश्चाताप होता है, क्या कर बैठे हम। बैलेंस, और वो बैलेंस है परमार्थ और व्यवहार। परमार्थ माना बाबा के अर्थ, परमात्मा के अर्थ, और एक व्यवहार जो आपने अपनी प्रवृत्ति की रचना की है। बच्चे हैं, घर है, कई कारोबार होती हैं, उसके लिए भी आपको जवाबदारी संभालनी, नहीं तो लोग कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों में गया तो इसका परिवार रुल गया। बदनामी किसकी? बाबा की। इसलिए समझदार वो है जो परमार्थ और व्यवहार दोनों को बैलेंस से चलाता है। कईयों को नशा चढ़ता है कि हम 10 घंटा 15 घंटा योग करें, रात को पूरी रात बैठ जाएं, 1 बजे 2 बजे उठ जाएं, लेकिन फिर दिन की दिनचर्या बिगड़ती है, कर्म में विघ्न आते हैं, शरीर साथ नहीं देता है, वो भी अति अच्छी नहीं है। वहां भी बैलेंस चाहिए। ये समझ बाबा ने दी है कि कैसे अपने शरीर को स्वोन्नति, सेवा, आत्मा और शरीर दोनों की समझ चाहिए, ज्ञान चाहिए। इसलिए सब ध्यान देना कि हम बच्चे बाबा के इस समय नॉलेजफुल है, समझदार है। बाबा अपने बच्चों को नॉलेजफुल का टाइटल देता है, फुल नॉलेज। और वो फुल नॉलेज ये है कि जैसे आत्मा की नॉलेज है वैसे शरीर की भी नॉलेज है, जैसे सेवाओं की नॉलेज है वैसे स्थिति की भी नॉलेज है, जैसे अलौकिक परिवार की नॉलेज है ऐसे लौकिक की भी नॉलेज है, उसका बैलेंस। और बैलेंस से अगर कोई चलता है तो उसका भाग्य बहुत ऊंचे से ऊंचा अपने आप बनता जाता है। इसलिए आप सब प्रवृत्ति में रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, जो भी बाबा के घर में आए हैं, अपने हर शक्ति का सही प्रयोग करना सीखना, जरा भी कहीं व्यर्थ न जाए, देखा देखी में न जाए, ये इतना करता मैंने किया तो क्या। कईयों को नाम की बड़ी भूख रहती है, मेरा नाम हो, मेरी महिमा हो, लोग मुझे पहचाने, लोगों को पता पड़े मैं इतना करता हूँ। कर्ज लेकर के भी कर देते सहयोग। बाबा कहता है वो कर्ज तो मर्ज है, क्यों कर्ज ले रहे हो, अपने पास जितना है उसमें से सफल करो, जो धन है जो आपके पास है उसमें से कुछ हिस्सा निकालो, उसके लिए संकल्प करो कि इसमें से कुछ हिस्सा लगना चाहिए। कई बाबा के बच्चे कहते हैं मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। बाबा कहता नहीं बच्चे, अगर आज कोई किसान कहे मैं गरीब हूँ, खेत है उसके पास लेकिन बीज बोने के लिए नहीं है, तो भी उसको समझ होनी चाहिए कि अगर हम बीज नहीं बोएंगे तो समय पर हमें फसल नहीं मिलेगी। इसलिए अपनी जो भोजन की सामग्री कम से कम करके भी उससे बीज निकालता है और खेत में डालता है जाके, ये नहीं सोचता चिड़िया खा जाएंगी, बरसात नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, नहीं, भगवान पर भरोसा रखता है और उसमें से थोड़ा सा भी बीज निकाल करके बो देता है तो उसको समय आने पर कई गुना रिटर्न मिल जाता है। ये ध्यान देना, संगम युग बीज बोने का युग है और इस बीज का फल जो है वो केवल 21 जन्म नहीं, लेकिन 84 जन्मों की गारंटी है। आज अंतिम जन्म में भी हम कोई भिखारी जैसे किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे हैं। इसी संगम की प्रारब्ध 21 जन्म तो गारंटी से सत्युग और त्रेता के अंदर कोई से भी कुछ जरूरत नहीं, सब संपन्नता है। यहां तक बाबा कहते हैं जिन बच्चों ने तन से सेवा की है उनका तन निरोगी है, वो एवर हेल्दी बन जाते हैं। जिन्होंने मन से सेवा की है उनका मन सदा प्रसन्न रहता है, वो एवर हैप्पी बन जाते हैं। और जिन्होंने धन से सेवा की है वो एवर वेल्दी बन जाते हैं, उनके पास वेल्थ की, धन की कभी कमी नहीं पड़ती। और ये तीनों चीजें हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, अच्छा स्वास्थ्य हो, धन संपत्ति अच्छी हो और मन बड़ा प्रसन्नचित हो, खुश नसीब है, खुश नुमा है, खुश मिजाज है, ये तीनों प्राप्तियां संगम पर भगवान के द्वारा हम बच्चों को हो रही हैं। लेकिन कैसे हो रही हैं उसका आधार है कि जिसने इन तीनों शक्तियों को, ये तीन शक्तियां हैं सबके पास, बाबा ने तन दिया है, तन अच्छा है, कभी भी ये नहीं सोचो ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है, ये मुझे नहीं करना, ये करना। जो चांस मिलता है, कोई भी यज्ञ की सेवा छोटी बड़ी नहीं होती। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा ये छोटी सेवा है। बाबा के घर में आए, जो सेवा मिली हाँ जी किया और बाबा ने तन को निरोगी कर दिया। मन सदा प्रसन्न है, कहीं भी मन चंचल नहीं है, डिस्टर्ब नहीं है, तनाव में नहीं आता, प्रसन्नचित है, क्योंकि मन मनाभाव रहते हैं, मन से शुभ भावना रखते हैं, शुभ विचार रखते हैं, शुभ चिंतन करते हैं, इसलिए मन प्रसन्न है। और स्थूल में भले धन नहीं है लेकिन ज्ञान धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन, इतना धन बाबा ने दे दिया जो बाबा कहता है ये धन जिसके पास है वो धन तो उसके पीछे पीछे आता है। ऐसे हैं आप सब। संगम युग पर भगवान ने एक एक बच्चे को संपत्तिवान भाव, सदा स्वस्थ भाव, सदा प्रसन्न चित्त भाव, ये वरदान दे दिए। और वो वरदान तभी मिले जब हमने यज्ञ के अंदर बहुत दिल से स्नेही सहयोगी बन करके तन को लगा दिया। जो सेवा मिली, चाहे रात को पहरा दिया, चाहे धोबी घाट किया, चाहे झाड़ू पोछा किया, चाहे बर्तन मांजे, चाहे रोटी बनाई, भोजन बनाया, जो सेवा मिली तन लगना चाहिए बाबा के घर में। आप लोग भी लक्ष्य रखना। कई माताएं आती हैं जो अपने घरों में नौकर से काम कराती हैं लेकिन सेंटर पर आके कहेंगी दीदी मुझे थोड़ा सफाई का, बर्तन मांजने का थोड़ी सेवा तो दे दो। वो जानती हैं यज्ञ की सेवा का कितना महत्व है। अगर कोई थोड़ा सा भी करता है उसका तन निरोगी बन जाता है, उसको सब प्रकार की सुविधाएं अपने आप घर में लौकिक में मिल जाती। ये समझ चाहिए। यज्ञ स्नेही और सहयोगी माना, तन भी बाबा के घर में लगे, सेवा में लगे, मन भी लगे, धन भी लगे, और अगर सब शक्तियों को हमने बाबा के कार्य में लगाया है तो संगम पर ही भगवान से रिटर्न में इतना बड़ा वरदान मिल जाता है जो हमारे जैसा संपत्तिवान कोई नहीं। संगम पर, भविष्य की बात छोड़ो, भविष्य तो मिलना ही है, उसके तो गारंटी है। इसलिए बाबा ने रुद्र यज्ञ रचा, ज्ञान यज्ञ रचा, और अपने बच्चों की सूक्ष्म कमी कमजोरियों की आहुति लेता है, इनको आहुति करो, दान करो। वैसे भी कहते हैं जब दान दी जाती है कोई चीज तो दान देने के बाद वापस नहीं ली जाती, वापस लेने वाले पर बहुत बड़ा पाप चढ़ जाता है। क्या आप सबने ऐसा दान दिया है, कभी वापस नहीं लेते हो? ये जो सूक्ष्म विकार हैं, कमियां हैं, कमजोरियां हैं, बाबा के आगे हम सब ने वायदे किए हैं, संकल्प किए हैं, बाबा आप आए हैं ये सब तेरा है। जो बुराइयां थी, कमी कमजोरियां थी, वो भी बाबा को दे दी, समर्पित कर दी। अब वो मुझे वापस नहीं लेनी है। अगर आ जाती है भूल से भी तो भी फिर से दृढ़ता का संकल्प करके बाबा ये सब दे रहा है, हल्के हो जाओ, लाइट हो जाओ। उसको ये नहीं समझो क्या करूं, मेरे संस्कार बड़े कड़े हैं, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये है। ये दो बीमारियां बहुत तेज गति से फैलती हैं। एक बहुत जल्दी आत्माएं अपनी कमी कमजोरियों को, संस्कारों को देख करके दिल से कष्ट हो जाती है। दिल से कष्ट समझते हो, उदास, निराश, हताश, मेरे अंदर थे संस्कार। बाबा कहता मैं तुम्हें देवता बनाऊंगा और मेरे अंदर इतने गलत संस्कार है, कैसे चेंज होंगे हम। सोच सोच करके कोई कोई बहुत हताश हो जाते, निराश हो जाते। बाबा कहता बच्चे कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना, भगवान की नजर आपके ऊपर पड़ी है, आप बहुत महान आत्माएं हो, विशेष आत्माएं हो, और उसकी गारंटी वो बना के छोड़ेगा। क्यों सोच रहे हो मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये है। बाबा को सामने रखो, बाबा को समर्पित करो, बाबा आप जानो, आप देखो कैसे हल्के रह सकते हो। और संकल्प दृढ़ है, अगर दृढ़ता का संकल्प है तो विजय निश्चित है, सफलता होनी ही है। इसलिए सभी, एक तो कभी भी निराश, उदास, दिल से कष्ट नहीं होना कि मेरे पास कुछ नहीं है। कई कैसे सोचते हैं मैं बताता हूं। आयु बड़ी हो गई, बीमारी आ गई शरीर में, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरा शरीर साथ नहीं देता है। सोच सोच करके अपने आप को बीमार कर लेते। बाबा कहता है बच्चे सोचने की बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है। क्यों सोच रहे हो, जैसा है वो बहुत श्रेष्ठ है, भाग्यवान, इसकी महिमा करो। अरे वाह बाबा, आपने कितना अच्छा तन दिया है, कम से कम इन कानों से भगवान के महावाक्य तो सुन रहा हूं, इन आंखों से तो अपने परिवार को, इस बेहद परिवार को, भगवान को देख रहा हूं, इस मुख से कुछ शब्द भगवान की वाणी हम निकाल रहे हैं, दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, क्या ये कम भाग्य है क्या? हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर हमारे शरीर अच्छा होता तो हम ये करते। बाबा कहता है ये कमजोर संकल्प करके अपने आप को निराश नहीं करो, जो है जितना है वो बहुत कुछ है, उसमें संतुष्ट रहो, किसी से भेंट नहीं करो। भेंट करोगे तो कभी खुशी नहीं हो सकती, कभी भी आप अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाओगे। हमेशा रहेगा इसके पास इतना है, मेरे पास नहीं है, उसकी तकदीर, उसका भाग्य उसके साथ है, मेरा भाग्य मेरे साथ है। तो जितना जिसको प्राप्ति हुई है, जो कुछ है, उसमें से संकल्प करो बाबा की सेवा में लगे। अच्छा तन है लगाओ, नहीं तन है तो मन मना भो, अच्छे अच्छे विचार करो। जितना आप खुशी में खुद रहोगे, आपके खुशी के प्रकंपन, वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलेंगे, आपको देख करके लोग खुश हो जाएंगे। ऐसे नहीं हम बुजुर्ग हो गए हैं तो और लोगों को परेशान करना शुरू कर दें, हर एक के आगे कंप्लेन करें, मेरे अंदर मेरे को ये दर्द है, मेरे को यहां दर्द है, मुझे ये होता, मेरे ये होता। बाबा कहता है कंप्लेन करना बंद कर दो, अगर कंप्लीट बनना है तो किसी भी प्रकार की कंप्लेन नहीं करो। ध्यान देना, जो है जैसा है, बाबा शुक्रिया आपका, बहुत कुछ दिया तुमने, नहीं तो पता क्या होगा। एक कहानी सुना दूं थोड़ी सी। एक बार मैं एक मंदिर में गया था, बहुत अच्छा मंदिर था आंध्रा में, सत्यनारायण स्वामी का मंदिर था। उस मंदिर में भट्टी चल रही थी, तो सबसे जो उसका ट्रस्टी था, मुखिया था, वो मेरे पास आया, कहता है भाई जी मंदिर में चलो ना एक दिन। हमने ठीक है चलते हैं। सुबह सुबह वो ले गया तो वहां पूजा चल रही थी, सत्यनारायण की कथा हो रही थी, और सत्यनारायण की कथा वैसे तो मैंने सुनी नहीं थी, लेकिन बहुत सारे नए नए युगल बैठे थे और सत्यनारायण की कथा चल रही थी। तो मेरे को पूछा, आपने सत्यनारायण की कथा सुनी है? हमने कहा नहीं, मुझे नहीं मालूम है, इतनी नहीं मालूम, थोड़ी बहुत बाबा सुनाता है वो सुनी है, बाकी क्या सुनाते हैं। तो उसने कहा कि बूढ़े ब्राह्मण के रूप में स्वयं सत्यनारायण स्वामी जी प्रकट हुए एक जगह पर, एक नाविक, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, नावों से बहुत कुछ कमा के विदेश से आया था, सोना चांदी हीरे सब ले करके, तो बूढ़े ब्राह्मण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि कितना ये सच्चा है। तो उस सच्चे उस ब्राह्मण ने उससे पूछ दिया, सेठ जी इस नाव में क्या है? तो सेठ जी के मुख से निकल गया, इसमें तो मिट्टी धूल है, लत्ता पत्ता है, कुछ नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था ये सामने कौन है। तो उसने कह दिया तथास्तु। और तथास्तु कहते ही वो जो सामान उसके अंदर इतने महंगे सब चीजें थी, जवाहरात भरी हुई थी, वो सब धूल मिट्टी हो गई। पश्चाताप किया उसने कि ये तो मेरे से गलती हो गई। सत्यनारायण स्वामी प्रकट हुए कि तूने झूठ क्यों बोला। ये कथा सुना करके और बहुत सारी बातें थी, उस दिन से लेकर के मैं अपने ब्राह्मण बच्चों को कहता हूं, ध्यान से सुनना, ये जो बूढ़ा ब्राह्मण हमारे सामने है ना, यही सत्यनारायण स्वामी है, यही श्री नारायण बनने वाला है, यही है ना, दूसरा तो नहीं है ना। इसके सामने कभी भी ये नहीं कहना मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं तो कह देगा तथास्तु, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। बाबा आपने बहुत कुछ दिया है, जितना दिया है वो बहुत है, संतुष्ट रहने की आदत डालो, भेंट नहीं करो किसी से, इसके पास है मेरे पास नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ है। अंदर से अगर बाबा के प्रति इतनी सच्चाई है तो कमी कोई के पास नहीं है। बाबा कहता है अरे बच्चे देखो आज भील लोग क्या खाते हैं, एक रोटला बना लेते हैं मोटा सा, मिर्ची का चार लेकर के खा लेते हैं, कोई आठ आने एक रुपये में भी पेट भरता है, कोई हजारों रुपए में पेट भरता है, लेकिन वो जो सुख की चैन सोता है गरीब, वो साहूकार नहीं सो पाता है। इसलिए गरीबी वाह, गरीबी वाह, संगम की गरीबी भी बहुत बड़ी गरीबी, बहुत भाग्य है ये। पैसे से अधिक पाप हो रहे हैं, जिसके पास बहुत धन आ जाता है ना, बहुत गलतियां करता, पाप करता है। इसलिए कभी नहीं सोचो इतना धन हो, क्यों भ्रष्टाचार की कमाई हमारे पास आए, कई ऐसी झूठी कमाई, गलत कमाई अगर हमने अपने घर में लाई तो वो कमाई कभी सुख की नींद नहीं करने देगी, चैन से सो नहीं पाओगे, भ्रष्टाचार की कमाई नहीं चाहिए। बाबा के घर में भी बाबा ने एक नियम बनाया था कि अगर कोई बच्चे ऐसी कोई कमाई दे रहे हैं तो वो कभी ब्रह्मा भोजन में यूज नहीं करना, भले मकान दुकान बने कोई जाकर के बनाओ, लेकिन ब्रह्मा भोजन में सच्चे कम ब्राह्मणों की कमाई आनी चाहिए। बहुत इसके कारण हैं। इसलिए आप सब बाबा के बच्चे, जो अच्छी सच्ची कमाई है, वैसे कलयुग में सच्ची कमाई होती नहीं है मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी बहुत ईमानदारी से, बहुत सच्चे दिल से, और अगर ऐसा कुछ है भी तो उसका हिस्सा निकालो, जिससे वो पाप का खाता आपका बढ़े नहीं, उस सेवा में कहीं ना कहीं सफल कर लो। लेकिन ध्यान रखना कि अगर हम ब्राह्मण सच्ची कमाई घर में लाते हैं, खाते हैं, तो उससे ही सुख चैन से रह सकते हैं। इसलिए एक तो कभी भी कुछ भी है, कैसा भी है घर, कितना भी है, उसमें ये नहीं कहना मेरे पास नहीं है, बाबा आपने जो दिया है ये आपका ही है, हम भी प्यार से सुखी रहेंगे और हम अपने सेंटर को, अपने मधुबन घर को भी भरपूर करेंगे। और ऐसे बाबा के बच्चों से ही इतना बड़ा यज्ञ चलता है। मुझे याद है अभी तो पंजाब से हम लोग गेहूं नहीं मंगाते, क्योंकि वहां बहुत सारी कीटनाशक दवाइयां डालने लगे, खुद भी अपने खाने के लिए बाहर से मंगाते हो, बेचते जरूर हैं लेकिन खुद नहीं खाते। लेकिन वो एक दिन था जब मैं खुद जाता था गंगानगर भटिंडा इस साइड में राजस्थान बॉर्डर पर, अब और भटिंडा में गया गेहूं लेने के लिए, सब किसान एक एक बोरी देते थे, और अगर 100 स्टूडेंट है तो 100 बोरी गेहूं इकट्ठा हो जाता था, दो तीन दिन में, खरीदना नहीं पड़ता था, ट्रक भर के आ जाता था। सबके सहयोग से यज्ञ चलता है। पूछते हैं लोग कहां से आता है, अरे इतने सब बच्चे हैं, अगर सब खेती वाले मान लो आज 50% भी खेती करने वाले हैं, उनके घर में अनाज हो रहा है, कहीं चावल हो रहा है, कहीं गेहूं हो रहा है, कहीं पर गन्ना है, गुड़ हो रहा है, हर एक बाबा के घर में सोचता है मैं कुछ तो भेजूं। इसलिए जहां पर भी कोई चीज होती है वो सब अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग देते हैं, सेंटर की बहनें उनको लेकर के इकट्ठा करती हैं और मधुबन में भेज देते हैं। इतने सारे परिवार की पालना उससे होती है, खरीदा जाता है तो कितना कहां से कितना महंगा मिलता है। इसलिए कोई पूछता है कैसे चलता है तो हम कहते हैं ऐसे चलता है, इतना बड़ा परिवार है। आज ज्ञान सरोवर बना तो पता क्या हुआ था, दादी ने एक ही डायरेक्शन निकाला था कि सभी सेंटर एक रुपया रोज निकाले, एक भाई एक बहन एक स्टूडेंट एक रुपया रोज करे, और उस समय 1.5 लाख स्टूडेंट ही थे, ज्यादा नहीं थे, अभी तो 10 लाख के ऊपर है। और एक रुपये के सहयोग से 1.5 लाख अगर रोज का निकल रहा हो तो 2 साल 1.5 साल में इतना बड़ा भवन बन गया एक एक रुपये से। और 1 रुपया निकालना तो किसी के लिए बड़ी बात नहीं थी। एक माता थी, ये ज्ञान सरोवर जब बन रहा था तो महाराष्ट्र की एक माता को पता चला, वो सफाई का काम करती थी, छोटे जाति की थी, वो मधुबन नहीं आ सकती थी, लेकिन उसको पता था कि वो मुरली सुनती थी, क्लास सुनती थी, तो उसने कहा दीदी आप जा रही हो, मैं भी एक ईंट लगाना चाहती हूँ, ज्ञान सरोवर में एक ईंट लगाना चाहती हूँ। तो उसने बहुत समय तक पैसा इकट्ठा करके एक छोटी सी सोने की रिंग बनाई, अंगूठी बनाई, और वो अंगूठी दीदी को दिया कि दीदी आप जा रही हो तो ज्ञान सरोवर में मेरी एक ईंट लगा देना। वो गरीब माता, बिल्कुल झाड़ू पोछा करने वाली, घरों में सफाई का, वो लेके बहन आई यहाँ पर और दादी को ये सुनाया कि दादी ऐसी भोली माता ने, गरीब माता ने ज्ञान सरोवर के लिए ईंट लगाई है, दिया है। और दादी को इतना खुशी, इतना नशा चढ़ा, वो क्लास में लेके आई और दादी ने अंगूठी पहनी और पहन करके डांस किया, इतना खुश हुई कि देखो ये ज्ञान सरोवर मेरा कैसे बन रहा है, ऐसे बना और इतने लोग सुख ले रहे हैं, इतने लोग इसका फायदा ले रहे हैं। तो जितनी आत्माएं यहां से सुख प्राप्त कर रही हैं, योग के गहरे अनुभव कर रही हैं, क्या इन सब की दुआएं ऐसी आत्माओं को नहीं मिल रही होंगी? वो शेयर होल्डर बने हुए हैं, उनको शेयर्स मिल रहे हैं। तो आप सब बाबा के बच्चे समझदार हो, ज्ञानी तो आत्माएं हो, यज्ञ स्नेही हो, यज्ञ सहयोगी हो, और सबके सहयोग से ही आज यज्ञ की इतनी वृद्धि, इतना विस्तार हुआ है। सिर्फ अभी बाबा एक शब्द और कहते हैं, स्नेही सहयोगी तो हो लेकिन यज्ञ रक्षक भी बनो। यज्ञ की रक्षा, वैसे तो बाबा रक्षक है, लेकिन बाबा कहते हैं मेरे बच्चों के पवित्र शक्तिशाली शुद्ध संकल्प एक बहुत सुंदर वातावरण क्रिएट करते हैं, वायुमंडल बनाते हैं, और उससे यज्ञ की रक्षा होती है। कोई भी आसुरी शक्ति वाला, आसुरी विचारों वाला व्यक्ति उस वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर सकता है, वो यज्ञ रक्षक कहलाता है। आप सब बाबा के बच्चे ऐसा योग करो, ऐसे शुद्ध पवित्र संकल्प क्रिएट करो जो आपके हर स्थान निर्विघ्न बन जाए। कोई भी आसुरी शक्तियां, भटकती हुई आत्माएं, आसुरी विचारधारा वाली आत्माएं उस वायुमंडल में प्रवेश न कर सके, ये जवाबदारी है। जैसे हम तन मन धन लगाते हैं, हर प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा यज्ञ में सहयोगी बनते हैं, बाबा की दुआएं ले लेते हैं, परिवार की दुआएं मिल जाती हैं, ऐसे ही बाबा कहते हैं आप मेरे बच्चे वर्तमान समय यज्ञ रक्षक बन करके यज्ञ में किसी भी प्रकार का विघ्न न आए उसके लिए बहुत पवित्र शुद्ध संकल्प करो, योग का किला बनाओ। योग के किले को कोई भी शक्ति, आसुरी शक्ति क्रास नहीं कर सकती। तो जितनी आत्माएं क्लास में आती हैं उन सब का एक फर्ज बनता है कि हम इतने पवित्र शुद्ध विचार करें, जरा भी कोई बात देखो, कमी कमजोरी संस्कार, कभी उसका वर्णन चिंतन नहीं करो, उसको समाप्त करने की विधि है तपस्या, योग करो। और योग के इतने अच्छे वाइब्रेशन बना दो जो उस वाइब्रेशन में जैसे आज सुरक्षा के लिए कोई भी शत्रु हमारे देश में प्रवेश न करे तो बाउंड्री बना देते हैं, तार की बाउंड्री बना देते हैं। और सिर्फ बाउंड्री नहीं बनाते हैं, उस पर करंट छोड़ते हैं, कोई इसके अंदर घुस ना आए। बाबा भी कहते हैं बच्चे अगर कहीं भी कोई आसुरी शक्ति प्रवेश हो रही है, कोई के व्यर्थ नेगेटिव संकल्प विकल्प चल रहे हैं तो ये भी सुरक्षा में सेंध है, घुस रहे हैं। इसके लिए आप सब ऐसी योग की करंट के ज्ञान और योग की तार पर करंट छोड़ दो, बहुत पवित्र विचारों की। कोई भी आसुरी शक्ति यज्ञ के ऊपर, बहनों के ऊपर विघ्न रूप नहीं बन सकती, ऐसे यज्ञ रक्षक बनने की वर्तमान समय जरूरत है। तो यज्ञ स्नेही हो, यज्ञ सहयोगी हो, सब कुछ सफल करो, कुछ भी निष्फल न जाए, और जितना है उतने में संतुष्ट रहो, प्रसन्न रहो, यही यज्ञ स्नेही यज्ञ सहयोगी बच्चों की निशानी है। और यज्ञ रक्षक बन करके अपनी सुरक्षा विकारों से, माया से हो, और अन्य आत्माएं भी सुरक्षित रहें, ये हम सबका फर्ज कहता है। ठीक है, ओके, ओम शांति।